Today we're reading, beginning with Sri Chaitanya Charitamrita, Madhyalila, chapter 9, text number 67.
Hare Krishna. तो हम श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 9 में से चर्चा कर रहे हैं और प्रयास संख्या जो है वो है 67.
So we are, let us say the Guru Parampara pranams please.
तो गुरु
चैतन्य महाप्रभु is on his tour of South India.
तो मैं पीछे का प्रसंग बताऊंगा ताकि आपसे कुछ छूटे ना. ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो दक्षिण भारत की यात्रा में है.
He has arrived at Tirupati and then Tirumala as you know the place the residence of Balaji up on top of the mountain.
और चैतन्य महाप्रभु तिरुपति और तिरुमल में यात्रा कर चुके हैं जहां पर भगवान बालाजी निवास करते हैं.
So after arriving at Tirupati, Lord Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Ramachandra.
तो तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए.
He offered his prayers and obeisances before Ramachandra, the descendant of King Raghu.
तो उन्होंने वहां भगवान श्री रामचंद्र के विग्रहों को प्रणाम किया जो कि भगवान श्री रामचंद्र जो कि महाराज रघु के वंशाली में आते.
Everywhere Sri Chaitanya Mahaprabhu went, his influence astonished everyone. This is text 66.
और जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे वहां पर हर किसी को विस्मित कर दिया करते थे.
He next arrived
जो कि पिछले प्यार में बताया गया.
He next arrived at the temple of Pana Nrisinga. Their Lord is so merciful.
और अगले में वो पान नगर में गए और वहां पर उनके दर्शन किए.
So there is a certain etiquette in the process of going to see Balaji up on top of the mountain.
तो एक शिष्टाचार है जो कि पालन करना पड़ता है जब हम लोग तिरु बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं पर्वत के ऊपर.
Some of, I don't know, has anyone here walked the 600 steps?
तो यहाँ पर कोई भक्त है जो कि बालाजी के दर्शन करने के लिए 600 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए हैं.
Going up to the top of the mountain. So then the etiquette is when I was traveling with Japadaka Goswami and the safari program, 140 devotees. So he taught us the etiquette for approaching Balaji.
तो मैं जयप्रदागा मास की सफारी यात्रा में गया था और जब उनके साथ गया था मैं दर्शन करने के लिए तो उन्होंने हमें बताया क्या शिष्टाचार होना चाहिए दर्शन करने में जाने के.
So the etiquette is that first you offer darshan to the deities at the bottom of the mountain.
तो सबसे पहले जो नीचे पर्वत के नीचे जो विग्रह हैं पहले हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं.
If I recall correctly, the temple of goddess of fortune is at the bottom of the mountain.
तो पर्वत के नीचे जो है लक्ष्मी जी का मंदिर है.
So then after observing a certain etiquette at the bottom of the mountain, then you go up the stairs to Balaji.
और फिर नीचे दर्शन करने के बाद फिर हम पर्वत में ऊपर जाते हैं बालाजी के दर्शन करने के.
Text 67. So I guess 69 is on the board, huh? 69 is on the
no,
board.
79.
Oh, I thought you said 69. 79? Oh, so we're starting with 77.
67 or 79?
Oh, 10 verses? Okay. Nrisinga pranati stuti prima veste kaila prabhura pravave loka chat kara haila. In great ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances and prayers unto Lord Nrisingadev. The people were astonished to see Lord Chaitanya's influence.
Sri Chaitanya Mahaprabhu ne prema vesh mein aakar Bhagwan Narasimha ko namaskar kiya aur unki stuti ki. लोग भगवान चैतन्य के प्रभाव को देखकर चकित हो गए.
शिव कांशे असिया कैला शिव दर्शना प्रभवे वैष्णव कैला सब शैव गणा. Arriving at Shiva Kanet, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the deity of Lord Shiva. By his influence, he converted all the devotees of Lord Shiva into Vaishnavas.
शिव कांची आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के अर्च विग्रहों का दर्शन किया, उन्होंने अपने प्रभाव से सारे शिव भक्तों को वैष्णव बना दिया।
Prabhupada, Srila Prabhupada. Shiva Kanchi is also known as Kanchipuram or the Benares of southern India. And Shiva Kancha, there are hundreds of temples containing symbolic representations of Lord Shiva, and one of these temples is said to be very, very old.
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये शिव कांची कांचीपुरम या दक्षिण भारत की काशी कहलाता है। शिव कांची में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें शिव जी के प्रत्येक के प्रतीक पाए जाते हैं और उनमें से एक तो अत्यंत प्राचीन मंदिर माना जाता है।
So this verse is very significant because it says that Mahaprabhu converted all, not some, all of the devotees of Lord Shiva into Vaishnavas.
तो ये प्यार महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी शिव भक्तों को वैष्णव बना दिया।
So a person with poor fund of knowledge, they may say, but Lord Shiva's a devotee of Lord Vishnu, so and he is Mahajan, so why would Mahaprabhu have to convert them? The Vaishnavas are already worshiping Lord Shiva. What's the problem? You see.
तो जिसका किसी का अगर अज्ञान अधूरा हो तो वो ये सोचेगा कि अगर शिवजी भगवान विष्णु के भक्त हैं और अगर वो महाजन हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उन ऐसे भक्तों को फिर क्यों प्रचार किया वैष्णव बनाने का प्रयास किया।
So what's your answer, yellow boy? Yeah, what's your answer? They're already, Lord Shiva is Mahajan. He's one of the 12 greatest authorities on the science of Krishna consciousness.
तो शिवजी महाजन हैं जो 12 महाजनों में से एक शिवजी हैं।
Then why would Mahaprabhu be converting the Shaivites to Vaishnava? Isn't that what's known as rasa bas incompatible? Why does that make any sense?
तो क्यों महाप्रभु ने शिवाइट जो थे उनको वैष्णव बनाया, क्या रसाभास नहीं है, इसके पीछे क्या कारण?
You're fairly new man. How long have you been practicing? How long has he been practicing? See, these yellow boys, don't be deceived. Some of them are 7-year devotees, you know. How long you've been devoting? You have to watch out, you know. I do heavy quizzes. Of course, this is not an easy quiz. This is not a beginner's question, but you're not a beginner. And you're being trained how to be a preacher. Go on. He speaks English too, by the way. Don't let him fool you.
तो ये प्रश्न जो है वो शुरुआती भक्तों के लिए नहीं है, लेकिन आप भी शुरुआती भक्त नहीं हैं, आप प्रचारक हैं, तो क्यों क्या कारण है इस क्या प्रश्न का क्या उत्तर?
Yes.
Because they think that Shiva is supreme. They don't know that Vishnu or Krishna is supreme. So Chaitanya Mahaprabhu want to give them the highest knowledge or highest thing.
Highest.
They think that Shiva is supreme. Shiva, devotee of Shiva think that they are supreme.
Yes, because Lord Shiva is a devotee of Lord Vishnu, so Mahaprabhu wants to upgrade them. Is that what you're saying? Okay, translate.
तो पद्म भूषण ने सही उत्तर दिया, तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो लोग जो शिवाइट हैं वो भगवान जो शिव जी को भगवान मानते हैं, परम सत्य मानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको ये ज्ञान देना चाहते हैं कि परम सत्य जो है विष्णु,
बेसिकली
तो उनको ऊंचा ज्ञान देना चाहते हैं, तो ये सही उत्तर है। हरी बोल।
For example, in the city of Delhi, there are so many temples of Lord Shiva, so many Shivalingas, must be hundreds of them.
दिल्ली शहर में कितने शिव मंदिर हैं, कितने सारे शिवलिंग हैं।
Yet if you approach the Hindu priest to explain exactly the relationship of Lord Shiva and Lord Vishnu, what is he going to say?
और अगर आप वहाँ किसी पुजारी से पूछें कि क्या संबंध है वहाँ शिव में और विष्णु में, तो वो जो है अच्छे से नहीं समझा पाएंगे।
You were a Hindu before you became transcendental. What is your answer? What is the Hindu priest going to tell you?
He doesn't honor? He says that the
will say, that's the problem. They will say all are equal. So here you get the, from this answer, we see that the priests who were the devotees of Lord Shiva were Hindu priests.
तो जैसे महाराज ने पूछा कि अगर आप किसी मंदिर में जो वहां पर पुजारी उससे पूछेंगे तो क्या बताएगा, तो भक्त ने कहा वो तो यही कहेगा कि सब एक समान है, तो क्योंकि जो है उसको पता नहीं इस कारणवश।
So the priests were not pure devotees of the Lord, otherwise Mahababu had to convert the Shaivites, you see. This is really important point, you know, because today there are hundreds of millions of devotees of Lord Shiva and so many thousands of Shiva temples throughout India, and not only India but throughout the world.
तो जो शिवाइट भक्त थे जो यहाँ पर जिनका वर्णन आ रहा है वो भी ऐसे उस हिंदू पुजारी के समान थे जिनको पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रचार किया और उनको सही तत्व बताया।
So you have to be able to answer this question.
तो आपको भी इन प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए।
First of all, you who are preaching go out and you speak to university students and all that. So what if somebody asks you this question? You see.
तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए ताकि अगर आप कभी प्रचार करने बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई आपसे पूछता है तो आपको इसके उत्तर का पता।
But it's a fact because the Hindu priest believes that Vishnu, Shiva and Brahma are one.
क्योंकि जो साधारण पुजारी हैं वो क्या बोलते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो एक हैं।
Without differentiation.
बिना कोई अंतर के।
Actually, that's impersonalism.
तो ये एक तरीके से मायावाद है।
Because Lord Brahma is a He's a jiva.
क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो जीवा हैं, जीव तत्व हैं, जीव हैं।
Lord Shiva, Shivatava, different category.
और एक दूसरा स्तर है शिवजी का जो कि शिव तत्व है, जो कि जीव तत्व से अलग।
Between Lord Shiva and Lord Vishnu is that Lord Vishnu is compared to milk and Lord Shiva is compared to dahi.
और भगवान विष्णु उनके अलग तत्व है, विष्णु तत्व है, और शिवजी विष्णु में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे दूध और दही का उदाहरण है, भगवान विष्णु दूध के समान है और शिवजी दही के समान।
Dahi is a transformation of milk. Yes and no. The dahi is a transformation of milk. It's not exactly the same as milk.
तो जो दही है वो एक विकृत रूप है दूध का, तो लेकिन समान भी नहीं है, लेकिन आता वो दूध से ही है। उसी तरीके से शिवजी जो है वो विष्णु से ही आते हैं लेकिन विष्णु तत्व नहीं।
But it comes from milk, it is made from milk. In that sense, you know, dahi is milk, but it's in a transformation.
तो क्योंकि दही दूध से आता है तो एक तरीके से वो दही है, सॉरी जो दही है वो दूध से आता है तो एक तरीके से दही दूध ही हुआ, लेकिन वो दूध का विकृत रूप।
The transformation is that Shiva Tattva is not as complete, not as unlimited as Vishnu Tattva. There is a distinction.
उसी तरीके से शिव तत्व और विष्णु तत्व में भी अंतर है, शिव तत्व जो है वो उतने पूर्ण नहीं है जितने विष्णु तत्व, उनमें भेद है।
Of course, could be an entire seminar on the subject of the relationship of Lord Vishnu and Lord Shiva. I can't take time to fully explain at present time, but in the story of Advaitacharya and the story of The story of actually was Lord Shiva was performing severe austerities to gain the darshan of Mahavishnu.
तो मैं पूरा सेमिनार दे सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, विषय के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं एक पर्टिकुलर प्रसंग में जिसमें जो शिव हैं के रूप में अद्वैत आचार्य हैं वो महाविष्णु के दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
Many thousands of years, because Lord Shiva could see that Kali Yuga was coming, so he was planning ahead. He wanted to do something about it because he's a Vaishnava of compassion. He wanted to do something about Kali Yuga. He could see it coming, just like if there was a huge, you know, monsoon coming that was going to knock all the trees down and break the electric system. He could see it coming, you know.
तो शिवजी ने देखा कि जो है वो कलयुग नजदीक आने वाला है, और वो क्योंकि एक वैष्णव हैं, वो दयालु हैं, तो उनके मन में दया थी, तो देख रहे थे कलयुग को आते हुए। जैसे अगर आप दूर से तूफान आते हुए देखें और आपको आप समझ सकते हैं कि तूफान अगर नजदीक आएगा तो सब तबाही मचाएगा, पेड़ों को उखाड़ेगा, नुकसान पहुंचाएगा।
So Lord Shiva performed severe austerities in order to gain the darshan of Mahavishnu.
तो इसलिए शिव जी जो है वो लोगों के हित के लिए तपस्या करते हैं ताकि उनको भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो।
Finally, when he attained the darshan of Mahavishnu, Mahavishnu told him that wasn't necessary. There's no difference between you and me.
तो फिर उन्होंने कहा कि आप उनको शिव जी की तपस्या करने के बाद उनको भगवान विष्णु का दर्शन होता है और फिर भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि आपको इतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके मेरे अंदर इतना भेद नहीं।
This amount of time I cannot explain. In 5 minutes I cannot explain. It is complicated. The relationship with Lord Vishnu. So it's like a Chintavedic Meditava one, but also quite different. So you see, Mahavishnu himself says, well, there's no difference between you and me. That was unnecessary. You could have just come see me. There's no difference between us. But that should have been misunderstood.
तो महाविष्णु ने कहा कि हाँ आप में और मेरे अंदर ज़्यादा भेद नहीं है तो ये जो फ़र्क है शिव तत्व विष्णु तत्व में ये जो भेद जो है एक तरीके से अचिंत्य भेद अभेद तत्व भी कह सकते हैं कि ये एक समान भी है और इसमें अलगपन भी है।
So similarly, it should be understood why Mahaprabhu is converting the Shaivites to Vaishnavas, you say. This is really important. We have to understand this point.
तो हमें समझना चाहिए कि क्यों चैतन्य महाप्रभु जो शिवैत थे शिव जी के भक्त थे उनको क्यों वैष्णव बनाने का प्रचार कर रहे हैं।
Because under the guidance of a Hindu priest, the followers of Lord Shiva cannot understand the position of Lord Vishnu, and they cannot understand relationship. They just can't. Only a pure devotee knows.
तो कई जो साधारण पुजारी हैं उनके अगर संरक्षण में कोई लोग हैं भी तो वो सही से तरीके से नहीं समझ सकते कि शिव जी की क्या स्थिति है और भगवान विष्णु की क्या स्थिति है, इससे वो एक तरीके से वो पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते।
We harmonize this by understanding that Lord Shiva is Mahajan, so he's one of the greatest devotees of Lord Vishnu. He understands the absolute truth perfectly. He's not confused.
लेकिन शिवजी जो हैं वो महाजन हैं, वो बहुत बड़े वैष्णव हैं, वो सही तरीके से जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, वो भ्रमित नहीं है।
So this is why Mahaprabhu had to convert them to Vaishnavas.
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को उन शिव भक्तों को प्रचार करके वैष्णव बनाना पड़ा।
Everybody clear? You clear on that, Prabhu? Come on, you speak English. Are you clear on that? Under pressure, they don't speak English. He comes to my classes and he speaks English. He hears classes. All right, everybody's clear on that point? It's really, I stopped because it's a really important point to understand. Why was Mahaprabhu converting Shaivites? Because they're already in a category of devotees of Lord Vishnu, but it's indirect. So Mahaprabhu was obviously clarifying all these same points that I'm clarifying so that they would understand the position of Lord Shiva properly.
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ इसके बारे में आप सब समझ चुके होंगे क्योंकि जो शिव जी के भक्त एक तरीके से जो है वो अपरोक्ष रूप से तो शिव विष्णु के ही भक्त हैं लेकिन वो इस चीज़ को सही तरीके से नहीं समझते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको ज्ञान देकर शुद्ध दर्शन।
The Lord then visited a holy place known as Vishnukanchi. There he saw Lakshmi Narayan deities and he offered his respects and many prayers unto them to please them.
Tat paschat Mahaprabhu Vishnukanchi namak sthan gaye jahan unhone Lakshmi Narayan ke arch vigrah dekhe aur unhe prasann karne ke liye namaskar kiya tatha anek stutiyan ki.
So Prabhupada's purport is this. Vishnukanchi is situated about 5 miles away from Kanchipuram. So that's about something over 10 kilometers.
Eight kilometers.
You can translate.
To Vishnukanchi, Kanchipuram ke lagbhag 5 mil ya 8 kilometer ki duri par hai.
It is here that Lord Varadraj, another form of Lord Vishnu, resides.
यहीं पर भगवान विष्णु के दूसरे रूप वरदराज रहते हैं।
There is also a big lake known as Ananda Sarovara.
यहाँ पर एक बड़ा सरोवर है जो अनंत सरोवर कहलाता
है। I don't think this is the same lake that Advaita Acharya and Mahaprabhu were sporting in. I think it's a different lake. Huh? And Advaita Acharya was playing Mahavishnu, and Advaita Acharya was playing Ananta Sesha, and Mahaprabhu was playing Lord Vishnu, and Mahaprabhu was lying down on top of. There was not this place; it was another place. At other times, they were sporting in the water also at one of these lakes, but I don't remember exactly.
All right. So Maharaj bata rahe ki. तो महाराज बता रहे हैं कि ये अनंत सरोवर शायद वो सरोवर नहीं है जो कि जहाँ पर अद्वैत आचार्य जो है वो और महाप्रभु जो है वो क्रीड़ाएं करते थे। अद्वैत आचार्य अनंत शेष बन जाते थे, महाप्रभु महाविष्णु बन जाते थे। वो जगन्नाथपुरी में नरेंद्र सरोवर नाम के सरोवर की बात हो रही थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु कांची में दो दिन ठहरे तो उन्होंने भाव वेश में नृत्य और कीर्तन किया।
When all the people saw him, they were converted into devotees of Lord Krishna.
जब सारे लोगों ने उन्हें देखा तो वह कृष्ण भक्त बन गए।
So it's really important that you understand the principle here.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आप एक सिद्धांत को समझें।
This Hare Krishna movement is an incarnation of Mahaprabhu.
तो जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार है।
And Srila Prabhupada descended as the most confidential Saktivish avatar of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu.
जैसे श्रीला प्रभुपाद जो है अवतरित हुए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के एक शक्तिविश अवतार के रूप में।
When we execute Krishna consciousness properly, then the same thing happens that people are converted just by seeing and hearing devotees chant. Actually, this is going on. This is going on all over the world now. People who never had any connection with Maha Mantra before become instantly converted. At least in their hearts, maybe they have to work out some intellectual stuff. But in their hearts, they become converted simply by hearing the holy name. So try to understand this point.
तो अगर हम कृष्ण भक्ति सही तरीके से करेंगे तो लोग जो है वो भी हमारे नृत्य और कीर्तन को देखकर जो है प्रभावित होंगे और वो भी वैष्णव बनेंगे। और ये चीज़ पूरी दुनिया भर में हो भी रही है। लोग जो है वो जब भक्तों का कीर्तन देखते हैं तो जो है उनका हृदय परिवर्तित होता है और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर
देते हैं। And the McDonald's era, and so this couldn't possibly happen. Don't think like that. Don't even begin to think like that, because that is atheism. But yes, it is. I make that. Prove me wrong. Prove me wrong. Anybody want to prove me wrong? You want to prove me wrong? You want to prove me wrong? Trust it.
तो आप महाराज कह रहे हैं कि हमें ऐसे गलती से भी नहीं सोचना चाहिए कि ये सब बातें जो हैं 530 साल पहले की हैं और इस युग में जिसमें मैकडॉनल्ड्स और ऐसी चीज़ें हमें पाई जाती हैं तो इस युग में ये चीज़ संभव नहीं है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये एक तरीके का नास्तिकवाद है। और अगर आपको लगता है तो आप मुझे गलत साबित करके दिखाइए।
I mean, the evidence, see, because this movement is an incarnation of Mahaprabhu, you really have to download it. The entire movement and all the chanting of Hare Krishna is going on all over the world, it's all Mahaprabhu. Try to understand.
So, this Krishna Bhavanamrita Andolan is Mahaprabhu's avatar. As much as Hare Krishna Mahamantra is preaching, Kirtan is preaching in the whole world, it is Chaitanya Mahaprabhu's avatar.
You're hearing and sleeping. Yes, I can watch your eyes. You're sleeping. Come on. You were spacing out. So, Bhakti yoga requires absolute attention. I watched. You were spacing out.
तो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति योग के लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है। तो तो हम जो है वो हमारा ध्यान ना बटे और हम सोए ना, तो इसलिए हम सतर्क रहे.
So what is the connection then between modern Krishna consciousness movement and what I'll read again what's described here is that when all the people saw him, they were converted into devotees of Lord Krishna. So what's the relationship then between this statement of by Krishna as Kaviraj Goswami and modern ISKCON and modern Krishna consciousness? What's the connection then, since you understand it so nicely? Why are you looking at his notes? You're looking at the book? You said you understood everything. You're busted. That's the problem with intellectuals. You're busted. You get that? I specialize in this. So did Gaur Govinda Swami. He did the same thing. In the Mahapur, they showed a video where there was some devotees facing out Gaur Govinda Swami. Busted him big time. So I have a little in common with him. Of course, he's a great saint and I'm nothing, but if you have to look at the booking, it means that you weren't paying attention. You're not a Shrutidhar, obviously. Do you know what Shrutidhar means? You do not know what a Shrutidhar is. But he has an excuse, though, because he's only a 6-month devotee. So he has an excuse. 7-year devotee, no excuse. Okay. Shrutidhar means who sees or hears once and memorizes. In the West, they call it photographic memory, translate.
तो महाराज जैसे कह रहे थे, जैसे यहाँ पर इस प्यार में हम पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर नित्य और कीर्तन किया और सारे लोगों ने जिन्होंने उनको देखा तो वे कृष्ण भक्त बन गए. तो इस वाक्य को हम कैसे समझते हैं, जो ये चीज जो कि 500 साल पहले हुई चैतन्य महाप्रभु के समय पे, आधुनिक इस्कॉन में क्या ऐसी चीजें होती हैं, तो इसमें क्या संबंध हम देख सकते हैं?
महाराज जो है वो भक्त को पूछ रहे हैं.
Because of the purity of devotees. So we are seeing that so many people are being converted, seeing Sankirtan only in streets, people are coming to ISKCON and they are being very much keen to come to ISKCON, that there is a very good, nice Kirtan is going on in ISKCON. So they come and slowly and gradually they become devotees.
Good, that's good. That's a pretty good answer. Hare Bol.
Hare Bol. तो प्रभु जी ने सही उत्तर दिया. प्रभु जी कह रहे हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है उनके उनकी शुद्धता से जो है जो भी उनको देखता था, दर्शन करता था, वो कृष्ण भक्त बन जाता था. उसी तरीके से आज जो चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनकी शुद्धता से भी जब वो कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो लोग जो देखने वाले हैं वो प्रभावित होते हैं, वो भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं.
माय पॉइंट इज दैट इट्स द सेम महाप्रभु एंड द सेम महामंत्र, इट हैज नॉट चेंज्ड इन 530 इयर्स.
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही चैतन्य महाप्रभु हैं अभी भी, और वही हरे कृष्ण महामंत्र अभी भी वही है, उतनी शक्ति अभी भी.
From here in Delhi, we get only a tiny pinpoint portion of understanding what's going on around the world with the spreading Krishna consciousness. From Delhi, just from our daily activities and some Harinam, Sankirtan on the streets and all that, we only get a tiny little pinpoint conception about what's what I'm explaining here.
तो यहाँ पर दिल्ली में रहकर हमारा जो दृष्टिकोण है बहुत ही संकुचित है. यहाँ पर रहकर हम ये नहीं जान पाते कि पूरे विश्व भर में कैसे संकीर्तन आंदोलन इतनी तेजी से फैल रहा
है. Where you really find out, the point that I'm making is YouTube and videos, documentaries made by devotees from all over the world. This last year in Mayapur, I saw a video of devotees out on the streets just introducing people to the Maha Mantra for the first time, getting them to chant Hare Krishna for the first time on the streets of maybe New York.
तो ये चीज आप देख सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया में जाएं, यूट्यूब में जाएं, वहाँ आप देख सकते हैं कैसे पूरे विश्व में संकीर्तन आंदोलन फैल रहा है. और मैंने ही ऐसा एक देखा कि न्यूयॉर्क पे की गलियों में कैसे लोग जो हैं, कैसे हमारे भक्त जो हैं, वो लोगों से पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करा रहे हैं.
So this was their first ever contact with Mahamantra. The devotees were out there. They're very jolly, and they're getting people to chant, come on, you try this, Hare Krishna, it's fun, you know, and they're getting them all jacked up, and they're in ecstasy. These non-devotees, who knows, most of them probably non-veg, and they're in complete ecstasy, real ecstasy, not, you know, pretend, real ecstasy, and laughing, and so jolly, and putting their hands up in the air, everything. First contact with the Holy Name. It's, try to understand, do you see now how it's the same? Do you see? Do you see how it's the same? It's the same, 530 years later. Just a different formatting, that's all.
तो मैंने उसमें देखा कि जब भक्त लोग उनको उनको कीर्तन में कीर्तन कर रहे थे उनको सम्मिलित कर रहे थे तो ये नए लोग जो कि हो सकता है कि मांस खाने वाले हों और सब गलत काम करने वाले हों लेकिन संकीर्तन में भाग लेकर ये सब बहुत उत्साहित हो रहे थे और अपना हाथ ऊंचा करके जो है कीर्तन में भाग ले रहे थे हंस रहे थे खुश हो रहे थे जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग जितने महाप्रभु को देखकर जो है वो भी ऐसे उत्साहित हो रहे थे और कृष्ण का नाम ले रहे थे ये चीज़ हम आज भी देखते हैं जैसे संकीर्तन निकलता है अलग अलग जगहों पर
Unfortunately, I've seen enough of these videos so I can speak on the subject. You see, I have witnessed myself these videos from all over the world where the people are ecstatic, you know, and it's growing every day. The number of people, you know, we could put up a digital clock on the wall, you know, of, you know, every, you know, it's probably every 5 seconds somebody chants Hare Krishna for the first time around the world every 5 seconds.
तो मैं इसके ऊपर कह सकता हूँ क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं पूरे विश्व भर में जहाँ पर ऐसा संकीर्तन होकर लोग उसमें जो है कृष्ण का नाम ले रहे हैं और अगर हम यहाँ पर एक ऐसे डिजिटल क्लॉक लगाएं ये देखने के लिए कि कितने लोग कितने समय में जो है नए नए लोग कृष्ण का नाम लेना शुरू कर रहे हैं तो महाराज कह रहे हैं शायद मेरी गणना होगी कि हर 5 सेकंड में एक नया व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को लेता है उसको उच्चारण
करता है It could be, it's conceivable that it could be less than 5 seconds. I mean, there's so much preaching going on around the world, you know, that it's possible that it might be even less than 5 seconds. Well, they put up a sign in Marbury saying every such and such, you know, amount of time somebody takes up chanting Hare Krishna was way too conservative, you know, where they, you know, I would think they were saying something like every 20 minutes or every half hour or something. That can't possibly be right. You know, it's much faster than that. The people are taking up all over the world chanting Hare Krishna.
और मेरे हिसाब से तो हो सकता है कि वो 5 सेकंड से भी कम हो मायापुर में हम देखते हैं कि वो भी ऐसा बताते हैं कि कितने लोग जो हैं नए नए लोग माला को स्वीकार कर रहे हैं तो वो कहते हैं हर शायद 20 मिनट में एक कोई पूरे एक व्यक्ति पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं किसी कोने में वो हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करता है लेकिन मेरे हिसाब से वो समय जो है बहुत कम है क्योंकि इतनी तेजी से पूरे विश्व भर में प्रचार हो रहा है
Text 71. After visiting Trimalaya, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see Trikalahasti. There he saw Lord Shiva and offered him all respects and obeisances.
So, Trimalaya देखने के बाद Sri Chaitanya Mahaprabhu Trikalahasti देखने गए. यहीं पर उन्होंने शिवजी को देखा और उन्हें सभी प्रकार से प्रणाम किया.
So, purport by Prabhupada, Trikalahasti or Sri Sri Kalahasti is situated about 22 miles east of Tirupati. So that's about 18 kilometers? 22 miles?
No, more kilometers.
14 kilometers?
Yes.
Huh? How many?
33. More than 33.
More than
33.
There's more kilometers than miles, right?
Yes.
Yeah, that's what I thought. So over 30 kilometers east of Tirupati is this city name, place of pilgrimage named Trikalahasti.
So, tatpare Srila Prabhupada ji ke dwara, Trikalahasti ya Srikalahasti, Tirupati se lagbhag 22 mil ya kareeban 33-34 kilometer purv mein sthit hai.
On the western side of is a river known as Suvarnamukhi.
Iske paschim mein Suvarnamukhi nadi hai.
By the way, maybe some of you didn't see the poster on the bulletin board, amazing historic event whereby a high court said that the River Jamuna and River Ganga are persons. I mean, this is amazing. Prabhupada, did you just imagine how pleased Srila Prabhupada is by this? It was unimaginable even 10 years ago, such a thing was unimaginable. It's this movement to try to understand.
तो अगर आप सामने नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगा है उसमें पढ़ सकते हैं जिसमें हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें गंगा और यमुना जी को एक उनको घोषित किया गया है कि वो एक जीव हैं वो एक व्यक्ति हैं तो ये जो है शायद 10 साल पहले जो है कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे कभी हाई कोर्ट जो है ऐसा एक ऑर्डर देगा लेकिन इस संकीर्तन आंदोलन कारण जो है ये संभव हो पा रहा है जिससे श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए होंगे
We're just speaking of 10,000 people on motorbikes with red flags in UP protesting against cow slaughter. I mean, you know, from day one, Prabhupada was preaching so strongly like this, like a lone voice of the wind. You know, he was preaching, just alone he was preaching like this almost. Okay, there were some Hindus here and there, but practically Prabhupada was, you know, you could say a lonely preacher like this. And now, so you can imagine, just try to understand, it's all Prabhupada's influence. You've got to understand that. Well, because, you know, new devotees say, well, I don't know your Prabhupada, I don't understand. Well, listen. Listen. This is how you understand our Prabhupada, your Prabhupada. That is his influence that 10,000 people are on motorbikes with red flags demanding an end to cow slaughter. It's Prabhupada. You've got to get that straight.
So, को करने के लिए 10,000 लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल में चढ़कर और लाल झंडों के साथ जो है वो काउंसलर के को ये करने के लिए जो है मजबूर कर रहे थे कि जो है इस ऑर्डर को घोषित किया जाए और काउंसलर को बोला काउंसलर को बोला तो वो हत्या के लिए काउंसलर को कि वो प्रेशर बनाने के लिए जो है लोग एकत्रित हुए
तो श्री प्रभुपाद कंटिन्यूज द प्लेस इज जनरली नोन एज श्री कालाहस्ती और कालाहस्ती एंड इज फेमस फॉर इट्स टेंपल ऑफ लॉर्ड शिवा देयर ही इज कॉल्ड वायुलिंग शिवा
तो ये सब जो है श्रील प्रभुपाद जी के प्रभाव के कारण है ये हमें समझना चाहिए नए भक्त लोग जो हैं वो शायद वो अक्सर पूछते हैं कि हम प्रभुपाद को इतना नहीं जानते तो अगर आप नहीं जानते तो कृपा करके सुनिए कि कैसे प्रभुपाद का प्रभाव जो है ये फैल रहा है प्रभुपाद की ही कृपा के कारण है और आगे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं त्रिकालहस्ती का मंदिर नदी के दक्षिण की ओर स्थित है ये श्री कालहस्ती या कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध है और शिव मंदिर के लिए विख्यात है यहाँ शिव जी वायुलिंग शिव कहलाते हैं
At Pakshi Tirtha, Lord Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Shiva. Then he went to Vridhakola, place of pilgrimage.
Pakshi Tirth mein Shri Chaitanya Mahaprabhu ne Shivji ka mandir dekha. Iske baad tab vah Vridhakola Tirth gaye.
So Prabhupada's purport. Pakshi Tirtha, also known as Tiukari Kundam is located 9 miles southeast of Chinglipad. So that means about 15 kilometers. I'm trying to get this down, you know. 15 kilometers. Okay, translate.
Pakshi Tirth, Tirukadi Kundam. भी कहलाता है और चिमलीपट से 9 मील या 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है
It has a 500 foot elevation and is situated in a chain of hills known as Viragiri or Vedachalam
यह 500 फुट ऊंचाई पर वेदगिरी या वेदालचल वेदालचम पर्वत श्रेणी पर बसा है
So, maybe it's a self-manifested deity. There, in South India, there are it's hard to say, but hundreds of self-manifested deities, either Lord Shiva or Lord Vishnu or Lakshminarayan, hundreds and hundreds of self-manifested deities, especially of Lord Nrsimhadev.
तो दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे विग्रह हैं जो स्वयं ही स्फुरित हुए हैं, जिसमें शिव जी के भी विग्रह हैं, विष्णु के भी विग्रह हैं, नरसिंह के भी वैसे विग्रह हैं, ऐसे बहुत विग्रह हमें मां दक्षिण में प्राप्त होते
हैं। He is a lion. No, a half man, all right, that's fine. We meditate on his lion portion, actually, Nrsimha.
So, Narsingh Bhagwan, jo hai, unka jo mood hai, bhav hai, wo ek sher ke roop mein, to ek singh ke roop mein.
So, we...
So, aadhe nar bhi hain, aadhe singh bhi hain, lekin hum jo unka manan karte hain, unke jo yugal roop hai, Narsingh ke roop mein karte hain.
So when we, I was on with Jayapataka Swami and 140 devotees on the safari in South India, and he called it the Nrsimha Safari because we went to so many of these Nrsimha temples that have been described. We went to so many Nrsimha temples, and the majority of them are self-manifested.
तो मैं जब जयपताका महाराज के साथ सफारी में गया था दक्षिण भारत की यात्रा में 140 भक्तों के साथ, तो वो सफारी का नाम ही नरसिंह सफारी रखा था क्योंकि ऐसे बहुत सारे नरसिंह के मंदिरों में हम गए थे और उसमें अधिकांश जितने भी अश्वग्रह थे वो स्वयं ही स्फुरित हुए थे।
Yeah, they can live in the forest, but also, you know, a lot of lions are fond of caves, yes. So Lord Shingadev is fond of caves. So these self-manifested deities, I think almost all of them are in caves.
So, Maharaj ne kaha kyunki Bhagwan Narsingh jo hai wo singh group mein hai, to aur singh kahan rehte hain? जैसे प्रभु जी ने कहा वन में रहते हैं और वन में भी कहाँ रहते हैं, खासकर गुफाओं में रहने का उनका उनको शौक होता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए नरसिंह भगवान के जितने भी विग्रह हैं अधिकांशतः ये इन गुफाओं में ही मिलते
हैं
और खासकर
Mahameshwar, so he goes on top of Mount. Yes, anybody want to challenge me? Great, good, I'll jump right off.
और ये गुफाएं भी हैं वो पर्वत के बिल्कुल ऊपर हैं, चोटी पर हैं अधिकांशतः, क्यों? क्योंकि जो है वो भगवान को अच्छा लगता है सिर्फ, तो और भगवान मालिक हैं और भगवान जो है वो मालिक होने के नाते जो है जो चीजें उनको अच्छी लगती है वो कर सकते हैं क्योंकि वो कह सकते हैं हम ईश्वर, मैं ईश्वर, हम नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं।
So on the tour we went to this famous temple of Lord Nrsimhadev, self-manifested Nrsimhadevi inside of a cave.
तो हम सफारी में ऐसे ही एक गुफा में गए जहाँ पर नरसिंह मोहन के जो हैं वो अर्श विग्रह थे जो कि अपने आप स्फुरित हुए थे, किसी ने बनाया नहीं था, छोटी सी गुफा थी।
And so some of these prabhus here may not have heard this story before. I've told it last before, I'll tell it again. It's a relishable story.
तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कुछ भक्तों ने नहीं सुनी होगी जो नए भक्त हैं।
So this Nrsimhadev, this one, I don't recall his name, maybe somebody remembers his name. He's got this lower jaw that sticks out. Yes. He has a lower jaw that sticks out like a tree.
तो मैं ऐसे भगवान के नरसिंह भगवान के दर्शन करने के जैसे अर्श फिगरों के जो नीचे जबड़ा है वो बाहर निकला हुआ
and he's very fond of a particular green colored herbal beverage, it's sweet and some herbs and all that, and he's very fond of this particular drink, so they pour hundreds of gallons of this drink they pour into his mouth every day.
तो उन विग्रहों को जो है वो एक हरे रंग का के जड़ी बूटी का बना एक ड्रिंक अच्छा लगता है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है वो कहीं लीटर जो है वो जो ड्रिंक बनता है वो भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है.
He's also on top of a mountain with about 1,000 stairs going up there. You have to walk up there. So,
तो वो बिल्कुल पर्वत की चोटी पर है और उसमें कई हजार सीढ़ियां हैं जो चढ़ के वहां जानी पड़ती.
So you give some money to the pujari and they give you a jug of this liquid drink and then I forget if the pujari pours in his mouth or if you get to pour it into his mouth. And his lower jaw, trying to understand, is sticking out quite long, about this long, and a big dish, you know, like, and he's drinking this thing.
और आप कुछ लक्ष्मी देकर वहाँ के पुजारी से वो ड्रिंक भी खरीद सकते हैं. और पुजारी जो है, या कभी पुजारी डालते हैं या आपको भी डालने का मौका दे सकते हैं भगवान के मुख पर, जो कि जो है वो जबड़ा जो भगवान का बाहर निकला हुआ है, तो आप मुख पर ये ड्रिंक डाल सकते हैं भगवान को पिलाने के लिए.
Well, if he's drinking hundreds of gallons every day of this, maybe not hundreds, but this 100 gallon of this nectar drink, where does it go? It's going into his mouth, and where does it go after that? I mean, does it spill over, you know?
तो महाराज बता रहे हैं कि कई सौ गैलन जो ड्रिंक है वो भगवान के मुख में डाला जाता है, और तो वो कहाँ जाता है? वो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उसको पीते हैं, वो कहीं से निकलता नहीं है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं.
It's a cooling drink, you know, it's a cooling drink. Lord Nishikadeva is hot. A lot of Nishikadevas are hot, you know, Ugra, they're hot. So he likes to be cool off with this nice cooling, you know, Ayurvedic beverage.
और ये जो आयुर्वेदिक ड्रिंक है ये ठंडा करने वाला है, और क्योंकि नरसिंह वाहन उग्र रूप में है तो गर्म रहते हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए जो है ये ड्रिंक पिलाया
जाता है.
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो विग्रहों में कोई पाइप जड़ी है जिसमें से जो है वो जब ड्रिंक डालते हैं भगवान के मुख पर तो वो फिर वहाँ पाइप से निकल के कहीं नदी में निकल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है. भगवान उसको पीते हैं, स्वीकार करते हैं.
No. Anybody think that it goes out maybe a crack at the bottom of the deity and through the crack it goes down to a little stream down the side of the hill? Anybody think that?
तो आपको क्या लगता है कि क्या विग्रहों के नीचे कोई क्रैक है जिसमें से पानी ड्रिंक निकल जाता है और फिर कहीं पर्वत से बाहर निकल जाता? नहीं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान उसको सारा पीते
हैं.
तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं.
He drinks all of it.
और भगवान उसको पूरे को पी लेते हैं.
So what? He's God. This is why Krishna consciousness is fun. Any of you believe that Krishna consciousness is fun?
तो प्रभु जी महाराज पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कृष्णा भावना अमृत जो है वो मजे से भरा है और उसमें बहुत आनंद है?
Yes. Okay, great. So how many of you think that Krishna consciousness is fun?
तो कितने लोगों को लगता है कृष्णा भावना में जो है वो आनंद से भरा हुआ है? अरे
If you go like this, that means maybe I'm not sure. Maybe I should go to a theme park instead.
आपका हाथ अगर आधा है इसका मतलब जो है आप सोच रहे हैं कि शायद है शायद नहीं है, शायद बाहर थीम पार्टी में ज्यादा है.
I kind of like the Cineplex, you know. Okay, well, Krishna consciousness is okay, but Cineplex is really great. I like it, you know.
तो आपका हाथ छोटा है या मतलब पूरा नहीं उठाया आपने, तो इसका मतलब आप शायद सोच रहे होंगे नहीं नहीं इतना नहीं है, शायद किसी सिनेमा हॉल में ज्यादा मजा आता.
So one fool went to see this deity.
तो एक मूर्ख भगवान इन विग्रहों के दर्शन करने के लिए गया.
Complete idiot.
जो पूरा मूर्ख था.
He wanted to see how deep was Lord Nishikadeva's throat.
वो ये देखने गया कि नरसिंह मान का जो गला है वो कितना गहरा है.
Is this a very good idea?
आपको लगता है ये बड़ा अच्छा है उसका जो सोच है.
He thrust his arm into the pan, into the jaw of Lord Shukadev, which is like a pan holding, let's say, you know, 5 or 7 gallons of the nectar drink in his lower jaw. So he thrust his hand in there because he wanted to see how deep was the throat of Lord Shukadev. It's a true story. I mean, you know, the priests of that temple, they tell this story.
वहाँ के पुजारी ने कहानी बताई, सत्य घटना है. तो उस आदमी ने क्या किया, भवन के गले को देख मापने के लिए, तो उसने जो भवन के मुखमर जो ड्रिंक भवन को पिलाया गया था, तो उसने क्या किया, उसको देखने के लिए गले में अपना हाथ डाल दिया. भवन नरसिंह भवन के मुखमर हाथ डाल दिया गले में देखने के लिए.
So then, he wasn't able to detect the depth of Lord Shingadev's throat.
तो जो है वो उसको माप तो पाया नहीं, उसको जो है वो कहीं उसको स्तर तो दिखाई नहीं दिया.
Belongs to the how stupid can you get department.
तो ये बताता है कि किसका मतलब कोई कितना मूर्ख बन सकता, कितना मूर्ख हो सकता.
So then he withdrew his arm from the mouth of Lord Shingadev. He withdrew his arm from the mouth of Lord Shingadev. Yeah, he withdrew his arm.
तो उस टाइम ने हाथ बाहर निकाल लिया.
But there was a problem.
लेकिन एक परेशानी आ गई.
His arm was gone. Gone. Lord Shukadev chopped it off. He didn't appreciate. So you want to put your arm in my mouth? He chopped it off. What a nonsense. What an apparat. Who would be such a fool to put their mouth in the, I mean, their, like in my mouth, or who would think to put even their fingers in the mouth of Lord Shukadev and take your finger, your hand out and find out that all your fingers are gone, you know? That's stupid.
तो जब उस व्यक्ति ने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश किया तो देखा उसका हाथ थे ही नहीं, कि नरसिंह भवन ने उसका हाथ काट दिया था वहां से. तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो कि अपना हाथ नरसिंह भवन के मुंह में डालेगा.
So that was irresistible to tell that story. I've told it before, but I think some people's yellow boys, they didn't hear it before. So that's a nectarine story. Anyways, we're out of time. So that means that next time, next reading, we'll begin with text number 73. Yes. No.
73 months.
The next time we'll begin with text number 72. Okay, because I didn't read it.
अगली बार से
जय
कृष्ण भगवान की
जय.
चैतन्य महाप्रभु की
जय.
ओ प्रेमानंद हरि हरि बोल.
हिज होलनेस भक्ति माधुर्य गौड़ स्वामी महाराज की.